یا علی مدد. الوائز رائے ابو علی مشنری، وائز نمبر 631.
آج دوسرا دینان ہے، اور یہ دینان ہے جو دوسرا کا دینان، جو دوسرے کے دینانوں کے اندر یوگ کا مطلب ہے خدا تعالیٰ کی عطائت،
اور اس عطائت کے اوپر عمل کرنا جس کو ہم ریاضت اور عبادت کہتے ہیں، اور جوگیسر کا مطلب کسی جگہ وہ آدمی جو عابد ہے عبادت کرتا ہے اور اس عطائت کے رستے پہ چلتا ہے، اور کبھی کبھی جوگیسر کے لفظ کو مرشد کے طور پہ بھی گنان کے اندر استعمال کیا ہے. جوگیسر کے گنانوں کے اندر بڑی معرفت ہے، اور معرفت کے ساتھ ساتھ خدا تعالیٰ نے جس طرح سے دنیا بنائی اس کا ذکر ہے، اور وہ ذکر اس لیے کیا گیا ہے کہ جس طرح خدا تعالیٰ نے دنیا بنائی اسی طرح سے ہمارے اندر بھی وہی حالات پیدا ہوتے ہیں. اگر باہر چاند سورج ہے تو ہمارے اندر بھی چاند سورج ہیں، اگر باہر ہوا پانی ہے تو ہمارے اندر بھی ہوا پانی ہے، باہر سمندر ہیں تو ہمارے اندر بھی سمندر ہیں، باہر ستارے ہیں اور بادل ہیں تو ہمارے اندر بھی ہے، باہر پہاڑ ہیں اور ندیاں اور دریا ہیں تو ہمارے اندر بھی ہیں، باہر اگر میوزک ہے تو ہمارے اندر بھی ہے، باہر اگر بے حساب خلا اور سات آسمان ہے تو ہمارے اندر بھی ہیں. غرض کے پھر صدر دین کا فرمانا ہے کہ جو کچھ خدا تعالیٰ نے ساری اپنی کریشن کے اندر، اپنی خلقت کے اندر اس نے پیدا کیا ہے، وہ سب کچھ انسان کے اندر ہے. خدا نے انسان کو ایک بالکل یونیک بنایا. یونیک اس لیے کہتے ہیں کہ اس جیسی خدا تعالیٰ کی اور کوئی مخلوقات نہیں. تو جوگیسر کے گنانوں کے اندر ہمیں بعض سنسکرت کے لفظ ملتے ہیں. سنسکرت ہے، پراکرت ہے، برج بھاشا ہے، دیوناگری ہے، اور ایسے اس کے اندر طرح ہیں کہ جیسے یوگی لوگ اپنے یوگ میں، سادھن میں، یا مرشد اور مرید کے درمیان جو کلام ہوتا ہے، اس قسم کے اس میں اسپیشل الفاظ ہیں جو آرڈینری حساب سے ہمیں پتا نہیں لگتا. تو یہ گنان ہے پیر حسن کبیر دین کے فرزند سید امام شاہ کا. ہیت دھری دھری فین جو کیا فین تھی اندنی پایا جی ہیت دھری دھری فین جو کیا فین تھی اندن پایا جی اند مدھ تھی سر میں رچنا کی مدھ تھی سر میں رچنا کی ترے سرجی پران نے کایا جگ سر جوگی تے دھیان تریا جی اے جگے سر جوگی تے دھیان ما تریا جی. لفظ ہیں، اس کی بندش، اس کا इसका जो वजन है पोइट्री के हिसाब से बहुत ब्यूटीफुल है। कहते हैं कि हेत रख रख के धरी को दो दफा इस्तेमाल किया है, तो उसको मतलब यह होता है कि तबका ब तबका। हेत का मतलब मोहब्बत, हेत का मतलब चाहना, हेत का मतलब पसंद, हेत का मतलब इरादा भी है। तो फरमाते हैं कि खुदा ताला ने अपनी पसंद से जो तबका ब तबका जारी रही सीन पैदा किया। सीन, सीन कहते हैं जिस तरह हम उर्दू में झाग कहते हैं, इंग्लिश में लेथर, LATHER। अब पानी और साबुन को मलो
और फिर हाथ घसो तो उसके अंदर से झाग पैदा होती है, इसको सीन कहते हैं।
हमारे मुंह में से जो थूक निकलती है वो भी सीन है। किसी भी चीज को हम अच्छी तरह से घोट डालें और वो फ्लफी हो जाए, बड़ी हो जाए, उसको भी सीन कहते हैं। हमारे शास्त्र के अंदर पीर सदर दीन और पीर हसन कबीर दीन और सैयद इमाम शाह ने सीन का जिक्र किया है। तो ये सीन का जिक्र गिनानों के अंदर इसलिए आया, ये एक बड़ी साइंटिफिक चीज है। साइंस ने आज इस बात को मालूम किया कि भला ये जितनी भी बॉडीज हैं, जैसे कि चांद, सूरज, सितारे या हमारी जमीन और दूसरे प्लेनेट्स, ये कैसे पैदा हुए। तो उन्होंने ये मालूम किया रिसर्च करके कि शुरू में गैस होती है और वो गैस रिवॉल्व होती है, घूमती है। जब गैस बहुत स्पीड से घूमती है तो वो आहिस्ता आहिस्ता लिक्विड फॉर्म में आ जाती है। जब वो लिक्विड फॉर्म में आती है तो उसकी स्पीड और फ्रिक्शन की वजह से वो आहिस्ता आहिस्ता जमने लगती है, यानी थिक होती है। थिक होने के बाद हार्ड होती है और इसलिए इस तरह से खुदा ताला ने जमीन, आसमान, चांद, सूरज, प्लेनेट, स्टार सब बनाए। और यही हकीकत है जो हमको पीरों ने गिनानों में फरमाई। साइंस को आज पता लगा है, पीरों ने हमको सैकड़ों साल पहले ये बनाया। अभी खुदा ताला ने गैस पैदा की। गैस जो है वो एक किस्म की हवा है, जुदी जुदी किस्म की गैसेस को मिक्स किया और वो गैसेस जब रिवॉल्व हुई खुदा ताला के हुक्म और मर्जी से, हेत धरी धरी, धरी धरी दो दफा कहने का मतलब ये है कि हर तबके के ऊपर उसने जिस तरह चाहा पसंद किया और उसने सीन पैदा की। गैस में से सीन हुई और उस सीन में से फरमाते हैं एक अंडा बनाया, अंडा बनाया यानी प्लेनेट बनाया, गोला बनाया, स्टार बनाया। और फ्रिक्शन की वजह से वो गर्म होता है। हमारी दुनिया को 3,000 मिलियन ईयर से ज्यादा हो चुके हैं, फिर भी आज ये हमारी दुनिया के ऊपर का जो क्रस्ट है, यानी इसका जो ऊपर का छिलका है हमारी दुनिया का, वो चंद मील ही गहरा है और उसके नीचे फिर मिट्टी है, पत्थर है। लेकिन अगर हम जमीन के ऊपर से कोई सुई डाल देवे, भूक देवे, तो तकरीबन 2000 मील के बाद जमीन सख्त गर्म है, ऐसी गर्म है कि जैसा ये सूरज गर्म है। जमीन के अंदर जो सेंटर है वो 4000 मील आग ही आग है। जमीन का सारा आर पार जो है, जिसको हम डायमीटर कहते हैं, वो लगभग 8000 मील है। इस 8000 मील में से अंदर 4000 मील का गोला आग ही आग है। और ये वो आग है कि जब ये वोल्केनो फूटते हैं, यानी ज्वालामुखी कहते हैं हम उसको उर्दू में, आतशफशां पहाड़ कहते हैं, तो अंदर से आग निकलती है। वो आग अभी तक जमीन भी अंदर है, जितनी भी खुदा ताला ने सृष्टि के अंदर रचना रची, जो हमको बड़े बड़े स्टार्स वगैरह दिखते हैं, वो आग ही है। इसको पीरों ने अपने ज्ञान के अंदर तेज कहा। तेज का मतलब लाइट भी है और तेज का मतलब नूर भी है। और हकीकत में नूर में से ही खुदा ताला ने लाइट बनाई, नूर में से ही जल बनाया, पानी बनाया। फिर सदरुद्दीन ने जो हमारी पुरानी दुआ थी उसके अंदर फरमाया, सुन माथी शान ना गिनान तेज जल। तेज यानी आग, उसके बाद जल बनाया। तो आग के बाद जब ही पानी बनाया तो पानी गर्म हुआ। इस दोनों के दरमियान में यानी आग और जल के बीच में गैसेस पैदा हुई, क्योंकि आग जो है वो गैस पैदा करती है। आग में से कोई चीज जलती है तो वो गैसियस मैटर होता है, तो वो गैसेस में से फिर पानी बनाया। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को 1:2 के हिसाब से मिक्स करके उसमें से पानी बनाया, और उस पानी में से जीव जंतु पशु पंछी लाइफ पैदा कर दी खुदा ताला ने। तो यहां इंड का मतलब है शुरू का गोला, बिगिनिंग ऑफ ए प्लेनेट। लेकिन इंड का नाम रख के एक बड़ी हिकमत की है। अंडा जो है वो एब्सोल्यूटली फुटबॉल की तरह गोल नहीं होता। अंडा जो है वो ओवल शेप है, ओब्लोंग है। और जितनी भी बॉडीज हैं सूरज के साथ, चांद के साथ, जमीन के साथ, जो कुछ भी आपको दिखता है वो फुटबॉल की तरह गोल नहीं, ऊपर से चपटे हैं, क्योंकि रिवॉल्व होते हैं और रोटेट होते हैं, इस वजह से ऊपर से चपटे हो जाते हैं। तो ऊपर और नीचे से उनका जो डायामीटर है वो छोटा होता है, और राइट लेफ्ट में से ईस्ट वेस्ट जो है उसका डायामीटर बड़ा हो जाता है। इसको ओवल शेप कह दिया, और उसने पीर ने इसको इंड कह दिया। यानी खुदा ताला ने जितनी भी बॉडीज बनाई वो अंडे की शक्ल में बनाई। कहते हैं कि इंड मध्य थी सर्वे रचना की दी, उसके अंदर से सारी जितनी भी खुदा ताला ने रचना की है उस अंडे में से। वो अंडा यानी बिगिनिंग का, सबसे पहले जब खुदा ताला ने गैस पैदा की और उसके अंदर से सबसे पहले कोई स्टार पैदा हुआ, तो वो स्टार टूटता रहा। वो इतना बड़ा स्टार था, सैयारा जिसको कहते हैं, वो टूटता रहा और उसमें से अलग अलग प्लेनेट्स और दूसरे स्टार्स बनते रहे। मेरे पास ब्लैक बोर्ड नहीं तो मैं आपको समझा सकता अच्छी तरह। हमारी जो दुनिया है ये दुनिया भी सूरज में से निकली है, और हमारी दुनिया के साथ इस कुर्राए अरज के साथ दूसरे जो 8 और भी प्लेनेट्स हैं वो भी सूरज में से निकले हैं, एक फ्रीक्वेंसी के साथ, यानी एक खास लहरों के अंदर सूरज जो है वो खांसता है, कफ करता है। जब ये सूरज खांसता है तो उसके अंदर से लाखों करोड़ों मन लावा बाहर निकलता है। जब वो बाहर निकलता है तो सूरज उसको जब जोर से बाहर फेंकता है और उसमें जो स्पीड पैदा होती है वो स्पीड से वो सूरज के इर्द गिर्द घूमने लगते हैं, क्योंकि सूरज जो है उसके अंदर ग्रेविटेशनल पुल है। स्पीड की वजह से वो सूरज के नजदीक नहीं जाते, ये खुदा की हिकमत और कुदरत है। हमारी जमीन जब सूरज में से निकली तो अब जिधर है इधर नहीं थी, इसके बहुत दूर थी। दिन ब दिन हमारी जमीन सूरज के नजदीक जा रही है। करोड़ों बरस हो गए, अरबों साल हुए, पहले बहुत दूर थी और ठंडी थी, बिल्कुल बर्फ ही बर्फ थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब ये गर्म होने लगी, ठंडक घटने लगी, क्योंकि इसके नजदीक आने लगी, उसकी स्पीड जो थी वो घटती रही है। स्पीड के घटने से सूरज उसको खींच रहा है। आप जैसे एक लकड़ी लेके एक धागे के साथ, डोरी के साथ कोई पत्थर बांध लो, आहिस्ता से उसको हिलाओ तो वो पत्थर घूमेगा, लेकिन जितना जोर से हिलाओगे इतना पत्थर ऊंचा होता जाएगा, यानी उस लकड़ी से दूर हटता जाएगा। यहां तक के जितनी भी डोरी बांधी होगी उसकी बिल्कुल लंबाई तक वो पहुंच जाएगा, कभी पत्थर छूट गया तो भाग जाएगा, क्योंकि डोरी ने उसको बांध रखा था। सूरज की डोरी जो है, सूरज की जो पुल है, सूरज की जो अट्रैक्शन है, जिसको साइंस की जबान के अंदर सूरज की ग्रेविटेशनल पुल कहते हैं, उसकी वजह से तमाम जितने भी ग्रह हैं, जितने भी प्लैनेट्स हैं, वो सब सूरज के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। तो हमारी जमीन जब सूरज में से निकली और सूरज ने उसको दूर फेंक दिया, तो उस वक्त जाते जाते रास्ते में जमीन में से एक हिस्सा टूट गया, और वो हिस्सा आज जिधर पैसिफिक ओशन है उधर से निकला, बहुत बड़ा खड्डा पड़ गया, और वो जो हिस्सा टूट गया वो हमारा चांद है जो जमीन के इर्द गिर्द घूम रहा है। क्योंकि जब जमीन ने उसको फेंक दिया तो वो जमीन की ग्रेविटेशनल पुल की वजह से उसके साथ चिमटा रहा और इसके जमीन के इर्द गिर्द घूम रहा है, और जमीन अपने इस बच्चे को लेके सूरज के इर्द गिर्द घूम रही है। आप कभी फिजिक्स पढ़ो तो जोगीसर के ज्ञान और पीरों ने जो हमारी दुनिया की खलकत के मुतालिक जो कुछ लिखा है तो आपको बहुत अच्छी तरह समझ आएगी, और जिसने फिजिक्स नहीं पढ़ा, ज्योग्राफी नहीं पढ़ा, उसको ज्ञानों के, खसूसन इस किस्म के ज्ञानों के समझने की तौफीक नहीं मिलती। तो इस तरह से सारी सृष्टि खुदा ने जितनी भी बनाई इस तरह बनाई, सबसे पहले जो स्टार बनाया था वो इतना बड़ा था, इतना बड़ा था कि फरमाते हैं उसमें से सारी रचना रची। खुदा ताला उसको बना के बैठ गया नहीं, खुदा ताला की कुदरत जारी है, खुदा की खलकत जारी है, वो नई नई दुनिया बना रहा है। बाज दुनिया बर्बाद हो रही है, नई हो रही है। खुदा की जो कुदरत है वो हमेशा से जारी है, हमेशा रहेगी। जिस तरह से दुनिया के अंदर बाज चीजें पैदा होती हैं और एक खास मुद्दत के बाद वो मिट जाती हैं, इसी तरह से दीनदारों ये सोलर सिस्टम, ये प्लेनेट, ये स्टार्स, ये भी एक खास मुद्दत के बाद खत्म हो जाएंगे। और पीरों ने हमको ऐसा भी कहा है कि ये जो हमारी पृथ्वी है, हमारा जो ये कुराए अर्थ अर्थ है, ये कब पैदा हुई और कब इसका एंड आएगा वो भी कहा है। इसकी उम्र अभी बाकी 4,25,000 बरस है, 4,25,000 बरस के बाद हमारी ये जो जमीन है सूरज इसको खींच लेगा और ये जल के बिल्कुल खाक हो जाएगी। तो फरमाते हैं कि इंद मध्य थी सर्वे रचना रचाई की थी, त्यारे सिर जी प्राण ने काया। खुदा ताला ने जब जमीन बनाई, सिर्फ हमारी नहीं और भी बहुत सी जमीनें हैं, फिर प्राण बनाया और काया बनाई। प्राण का मतलब हमारा जीव है जिसको हम लाइफ फोर्स कहते हैं, और जो प्राण पुरुष है वो आत्मा है जिसको हम रूह कहते हैं। हमारे यहां यानी हमारे बदन के अंदर एक तो हमारा खुद का बदन है, फिर उसके अंदर जीव है जिसकी वजह से हम जीते हैं, और फिर हमारा एक मन है जिसमें से हम सोचते हैं और इरादा करते हैं, और सारे बदन को हम हुक्म करते हैं। जीव का जो काम है वो महज एनर्जी देना है, हयात देनी है, जिंदगी देने का है। मन कंट्रोल करता है, लेकिन इन सब का बादशाह जो है वो रूह है। इसको ज्ञानों के अंदर प्राण पुरुष कहा। पुरुष का मतलब मर्द होता है, जैसे एक औरत का मर्द उसका खाविंद उसका मालिक होता है, इसी तरह से प्राण का मालिक जो है वो आत्मा है जिसको रूह कहा गया। एक जगह पीर ने फरमाया है, प्राण पुरुष तो अमर छे, काया मरी मरी जाए, यानी रूह जो है वो तो अमर है, रूह को मौत नहीं, मगर ये जो बदन है मरी मरी जाए, यानी बहुत दफा मर जाती है फिर पैदा होती, फिर मर जाती फिर पैदा होती, इसके लिए फरमाया मरी मरी जाए। रिपीट करके कहने से उसको कंटिन्यूएशन दे दी। तो पीर सैयद इमाम शाह फरमाते हैं, हेत धरी धरी खुदा ताला ने पसंद करके तबका दर तबका फीन को, उस झाग को एक बहुत बड़ा स्टार बनाया, सैयारा बनाया, और उसमें से एक अंडे की शक्ल बनाई, और उसके अंदर से सारी सृष्टि की रचना की, और फिर उसके बाद उसने प्राण बनाया, यानी कुव्वत हयात बनाई, जिसको हम एनर्जी ऑफ लाइफ कहते हैं, और काया बनाई। इस काया का मतलब सिर्फ हमारी काया ही नहीं, पशु पंछी की भी काया। काया का मतलब एक बॉडी जिसके अंदर लाइफ होए। जुगेसर आई इबादत करने वाले, ऐ खुदा ताला के मुतालिक समझने वाले, जिसको हम आरिफ कहते हैं, जोगेश्वर का मतलब आरिफ समझ लो, खुदा की मारिफत के लिए कोशिश करने वाला इंसान। जोगी ते ध्यान थी तरिया, यानी जो जोगी हैं वो इबादत, ध्यान का मतलब सुरती लगा के एक मन होके इबादत करने से तुम तारे जाओगे, तुमको नजात मिलेगी, और या तुम खुदा ताला की इस तमाम मखलूकात की सृष्टि और इसके अलावा और जो कुछ है उसकी कुदरत को समझने के लिए तुमको ध्यान की जरूरत है, इबादत करो। दूसरे पाठ है, आदन रिंजने ए इच्छा जो की धी प्रथम जोगना मूल निपाया जी। तर्जुमा तो करता हूं लेकिन मुझको ये घिनान बोलने में मजा आता है, उसकी वजह यह है उसके अल्फाज बहुत अच्छे हैं। कहते हैं, आद निरिंजने इच्छा जो की धी प्रथम जोगना मूल नि पाया जी, ते जोग मधे जुगे सारा रही ने ते जोग मधे जुगे सारा रही ने ते पिंड साथे मेली माया जुगे सर जोगी ते ध्यान सो तरिया जी। जुगे सारा जोगी ते ध्यान मा तरिया जी, आद निरिंजने उस खुदारी जो अपनी गायबुल गयूब हालत में था। खुदा ताला की हालतें बदलती नहीं लेकिन उसकी भी बहुत सी हालतें हैं। उस आद निरिंजन ने इच्छा जो की दी, उसने इरादा किया। एक हदीस कुदसिया है, रसूल पाक ने फरमाया कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने फरमाया, ऐ दाऊद मेरी इच्छा हुई, मेरा इरादा हुआ कि मैं पहचाना जाऊं, इसके लिए मैं जो छुपा हुआ खजाना था मैं जाहिर होने के लिए ये सारी सृष्टि यानी मैंने खलकत पैदा की। उस आद निरिंजन को कि जब खुदा ताला बिल्कुल अकेला था उसका इरादा हुआ, प्रथम जोगना मूल निपाया, पहले उसने अपनी ताबेदारी अतायत गुजारी की बुनियाद रखी, क्योंकि उसके सिवा जो कोई भी होगा तो वो इसकी यानी खुदा ताला पाक की ताबेदारी करेगा। अगर वो ताबेदारी नहीं करेगा तो जंग होगी, और जो बना है वो इसका बनाया हुआ है, इस जैसा तो है नहीं। इसके लिए खुदा ने जब इरादा किया कि मैं खलकत बनाऊं, तो उसने योग की बुनियाद रखी। मैंने आपको उसका तर्जुमा बताया कि योग का मतलब खुदा की अतायत। तो क्या हुआ, ते योग मध्य जुगीसर रही ने उस अतायत के अंदर जुगीसर, यहां जुगीसर का मतलब ताबेदार, मुती, अतायत गुजार, फरिश्ते, ते पिंड मजे मेली माया। फिर उसके अंदर जब खुदा ताला ने फरिश्ते बनाए, या जो कुछ भी उसने अपना नूर मोहम्मदी अपने से जुदा किया, तो नूर मोहम्मदी के ऊपर अपनी ताबेदारी लाजम कर दी। पहले नूर मोहम्मदी बनाया जिसको गुरु ब्रह्मा कहा गिलानों के अंदर, तो गुरु ब्रह्मा भी मौला का ताबेदार है। नूर मोहम्मदी सबसे पहले उसने अल्लाह को सजदा किया, फिर उसने फरिश्ते बनाए, फिर उसने और खलकत की, मगर उसके अंदर माया रखी। माया कहते हैं खुदा ताला की जो कुदरत की वजह से खलकत पैदा हुई, तो उस खलकत के लिए जो खुदा ने इंतजाम किया, यानी खाना पीना रहना सहना ताबेदारी सोना आराम करना, ये तमाम चीजें माया में आती हैं, इसको हम कुदरत कह सकते हैं। खुदा ने अपनी कुदरत रखी, और बदन था उनका, फरिश्तों का भी बदन था। नूरे मोहम्मदी को अपने से जुदा किया तो उसका नूरान जो नूर था वो नूरानी हालत में था, तो वो भी एक पिंड हो गया। आद निरिंजन है इच्छा जो की दी, प्रथम योगना मूल निपाया, ते योग मधे जुगेसर रही ने ते पिंड साथे मेली छे माया। माया बनाई, और इस माया के बगैर यानी खुदा की कुदरत के जो कवानीन हैं उनके बगैर सृष्टि कायम ना रह सकती थी। तीसरे पाठ में फिर खुलासा करते हैं, ये सब देखो तबका ब तबका हो रहा है, और यही चीजें हमारे अंदर हो रही हैं इबादत के अंदर। जब इंसान इबादत में बैठता है तो एक खुला है जिसको वैक्यूम कहते हैं, और इबादत में हमें हजर इमाम का जाहरी शक्ल शबाहत का ख्याल करने की मना है। आप जब बैतुल ख्याल में बैठो और आंख बंद करो तो हजर इमाम का जो आपने जाहरी दीदार किया है उसको याद मत करो। आपको जो बोल दिया गया है वो बोल एक कैरिज है जिसके ऊपर आप चढ़ के, जैसे कि एक हवाई जहाज है एरोप्लेन, उसमें बैठ के जिस तरह आप उड़ते हैं, बिल्कुल इसी तरह से बैतुल ख्याल के इस बोल के ऊपर आप अपने रूह को सवार कर दो। ये बैतुल ख्याल का बोल कैसी उसकी मिसाल है कि जैसे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पे गए तो कहते हैं बुर्राक नाम का एक घोड़ा था, उस पर बैठ के गए। अरबी जबान के अंदर बर्क कहते हैं बिजली को जो आसमान पे चमकती है, और कितनी तेज होती है, रोशनी की जो स्पीड है, लाइट की स्पीड, वो 186,000 मील एक सेकंड में है। इतनी स्पीड है लाइट की, और बर्क से बुर्राक निकला घोड़ा। कहीं रसूल अकरम की हदीसों में हमको घोड़ा का जिक्र नहीं मिलता,
लेकिन जो दूसरे लोगों ने रवायतें की हैं उनमें से हमको पता लगता है कि नबी साहब आए घोड़े जिब्रील लेके आए घोड़ा, उस पर बैठे, और आंख की पलक में वो घोड़ा जमीन से आसमान से चला गया।
पहले कहते हैं कि इधर से उसने एक जंप लगाया मक्का से, क्योंकि रसूल पाक को जब मेराज हुई तो हुजूर मक्का में थे, हिजरत नहीं हुई थी, हिजरत बाद में हुई। तो मक्का से एक आंख की पलक में यरूशलेम पहुंच गए, मस्जिद अक्सा से ऊपर गए। वो घोड़ा कोई ऐसा घोड़ा ना था जैसे हम देखते हैं, लेकिन वो ख्याल का घोड़ा था। हमारे जो ख्याल हैं, हमारा जो मन है, हमारा जो रूह है, दोनों की स्पीड बहुत है। मन की स्पीड भी बहुत है, रूह की तो उससे भी ज्यादा है। तो रसूल पाक इबादत में बैठे थे और आपको मेराज हुई। ये बदन ऊपर नहीं गया जो अमूमन सुन्नी लोग मानते हैं, बदन की ये ताकत नहीं, चाहे वो बदन नबियों का हो या इमामों का हो। बदन आखिर मिट्टी से बना है, मां के पेट में से उस तरह पैदा हुआ है कि जैसी सारी खलकत पैदा होती है। मगर वो खुदा ताला की रहमत से रसूल अकरम को वो चीज बख्शी गई कि रसूलुल्लाह बुर्राक पे यानी अपने रूह के ऊपर बैठ के तो खुदा ताला के हुजूर में पहुंचे। वो कोई बाहर नहीं था, वो अंदर ही अंदर था, सब कुछ अंदर है। यानी आपने खुदा ताला की मुलाकात की, दीदार किया और उसके साथ मिल गए। मौला अली के कलाम में है तो के बंदे खुदा के जो हैं उनको भी मेराज होती है, और खुद रसूल अकरम की हदीस है कि अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन, मोमिनों को बंदगी के अंदर मेराज मिलती है। सलात का मतलब महज नमाज ही नहीं, खुदा ताला की जो याद और जिक्र है वो भी सलात है। तो इसके अंदर जो आद निरंजन ने खुदा ताला ने अपना इरादा करके इतायत गुजारी की बुनियाद डाली, और उसके अंदर फिर उसने अपने ताबेदारों को पैदा किया, उनका बदन बनाया और माया बनाई। तो मैं माया के मुतालिक जिक्र करता था, आगे आपको और थोड़ा उसका खुलासा आता है कि खुदा ताला को माया की जरूरत है। माया कुदरत है, उसके बगैर सृष्टि नहीं रह सकती, मगर उसकी एक लिमिट है, आगे उसका जिक्र आता है। काया ने माया बेजुगल सिरजा, जुगल कहते हैं कपल या पेयर। काया ने माया बे जुगल सिरजा, तेज मध्य जोग समाया जी। अजोग माहे थी जुगत जैसे राजी, जोग मधे माहे थी जुगत जैसे राजी, ते मां त्रण तत्व लो पाई रहे आजुगे सर, जोगी ते ध्यान में तरे आजी। काया और माया खुदा ताला की कुदरत के जो लॉज हैं, काया और माया दोनों को कपल बनाया, जुगल बनाया, क्योंकि काया को फिर बहुत सी चीजों की जरूरत है जो खुदा की कुदरत से मुकर्रर हुई है। काया को खाना चाहिए, पानी चाहिए, आराम चाहिए, फिर इसके अलावा और भी बहुत सी चीजें चाहिए। तो काया और माया पेयर है, दोनों साथ चलते हैं। अगर काया नहीं है तो माया नहीं है, और अगर माया नहीं तो काया नहीं, माया के बगैर काया नहीं, काया के बगैर माया नहीं। तेज मध्य जोग समाया, जोग का मतलब मैंने आपको बताया खुदा ताला की अतायत गुजारी, और तेज का मतलब है नूर। तेज मध्य जोग समाया, नूर के अंदर ताबेदारी समाई हुई है। यानी मतलब कि तुम जो ताबेदारी करोगे, खुदा की अतायत करोगे, तो तुम्हें उसके नूर का पता लगेगा। तेज मध्य जोग समाया, जोग महे थी जुगत सिर जी, खुदा ताला ने अपनी ताबेदारी के लिए उसने सारी सृष्टि की रचना की, तेमय तरण तत्व लोपाई रहया, तीन तत्व उसके अंदर इम्पोर्टेंट बनाए और उसके अंदर इन्वॉल्व हुए। वो तीन तत्व हैं जीव मन आत्मा। खुदा की सारी सृष्टि के अंदर जहां जहां पिंड है, माया और काया साथ हैं, तो उसके साथ ये तीन तत्व रखे, जीव मन आत्मा। हमारे पिंड के अंदर ये तीन तत्व आए। अच्छा, इन तीन तत्वों से फिर तीन गुण बनाए। गुण कहते हैं उसका रिजल्ट। गुण का मतलब सिफत भी है, गुण का मतलब उसकी नेचर। जैसे कि पानी की नेचर है कि भीना कर देता है, आग की नेचर है जला डालती है, गर्म कर देती है, बर्फ ठंडी है, तो इसको गुण कहते हैं। फरमाया कि काया और माया दोनों का पेयर बनाया और उसके अंदर से खुदा ताला ने यह कानून बनाया कि ताबेदारी से तुम्हें नूर मिले। योग महे थी जुगत सिरजी, योग के अंदर से खुदा ताला ने, यानी अपनी ताबेदारी की वजह से, ताबेदारी से, जैसे कि अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में फरमाया, वमा खलकतुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदूना, हमने नहीं बनाया इंसानों और जिन्नों के सिवाय इसके कि हमारी ताबेदारी करें। ये ताबेदारी योग है और इस योग से खुदा ताला ने सारी सृष्टि बनाई। तेमय तरण तत्व लोपाई समा रहा, तीन तत्व उसमें रहे, वो याद रखना, जीव मन आत्मा। चौथा पाठ है, तरण तत्व महे थी तरण गुण जो सिर जा तो जोगी एने जमाहे मिले आजी। तरण तत्व माहे थी तरण गुण जो सिर जा तो जोगी ए तेज माहे मिले आजी। असाद माहे थी शब्द जो थया साद माहे थी शब्द जो थया शब्द थी तेज सर्वे खेलिया जोगे सर जोगी ते ध्यान मां तरे आजी। तरण तत्व माहे थी तरण गुण जे सिर जिया, तीन तत्व जीव मन आत्मा, उसमें से तीन गुण बनाए और वो गुण हैं तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण। तमोगुण का मतलब जो बिल्कुल नीचे का गुण है, जैसे कि खाना पीना, आराम, गुस्सा, खुदगर्जी, ये तमोगुण है। फिर है रजोगुण। रजोगुण का मतलब अंतर की खुशी और सुख। और सत्वगुण जो है वो खुदा ताला की नूरानी बख्शीश है, और सत्वगुण से इंसान के अंदर पीस ऑफ माइंड है, इबादत है, नेकी है, कुर्बानी है। तो ये तीनों चीजें, तीन गुण अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर इस तरह फरमाए, नफ्से अम्मारा, नफ्से लवामा, नफ्से मुतमाइना। नफ्से अम्मारा है कि जैसे दुनियादारी जिसके अंदर खुदगर्जी और स्वार्थ आता है, खाना पीना, आराम वगैरह, और इंसान अपने इस नफ्से अम्मारा की वजह से بہت دفعہ دین سے ہٹ جاتا ہے. دیکھو آپ لوگ امریکہ میں رہتے ہیں, یہاں عموماً لوگوں کے اندر نفس امارہ چھایا ہوا ہے, کھاؤ پیو ایش آرام کرو, اور بہت زیادہ خود غرضی ہو چکی ہے. نفس مطمئنہ کی تو بات چھوڑ دو, نفس لوامہ بھی نہیں ہے. نفس لوامہ اس کو کہتے ہیں کہ انسان کا خدا تعالی کے حضور میں عبادت وغیرہ نیکی کرنے کا ارادہ ہے, یہ نفس لوامہ سے ہے. اپنے بچوں سے محبت رکھتا ہے, یہ نفس لوامہ ہے. ماں باپ کی خدمت کرتا ہے, یہ نفس لوامہ میں آتا ہے. اور عبادت بندگی محض خالص خدا کی محبت جو ہے وہ نفس مطمئنہ ہے. دنیا کا دکھ سکھ اس آدمی کے دل پہ نہیں لگتا. قرآن پاک میں یہ جو تین گن ہیں وہی تین گن یہاں ہیں. جیو من اور آتما, ان کے تین گن ہیں, جس کو تمو گن رجو گن ستو گن کہا. اور تمو گن ہے نفس امارہ, رجو گن ہے نفس لوامہ, اور ستو گن ہے نفس مطمئنہ. تو فرماتے ہیں کہ آ ترن تتو ماہے تھی ترن گن جو سرجیا, تے جوگی نے اے تیج ماہے ملیا. وہ جوگی جس نے ان تینوں کے اوپر قبضہ کیا, ان تینوں کو کنٹرول کیا, تو وہ تیج میں یعنی نور کے اندر مل گیا, تیج میں مل گیا. ساد مدھے تھی شبد جو تھیا, خدا تعالی نے آواز کی کن, جس طرح اس نے کہا کن, فرمایا فیا کن, وہ ہو گیا. تو خدا تعالی نے سب سے پہلے اپنی آواز نکالی اور ساؤنڈ میں سے شبد نکلا. اس گنان کو یاد کرو جو آپ کبھی بولا کرتے ہیں, آد تھکی اے سنا نپا شبد نپایا جگے سر, سن ماتی شبد نپایا جگے سر, یوگ کا مرم کوئی نہ جانے, یوگ کمرم یوگے سر جانے, یوگ کمرم. آد اوپر آ گیا, وہ لفظ آد نرنجن. کچھ بھی رچنا سے پہلے خدا اکیلی حالت میں تھا, جیسے کہ وہ بالکل احدیت میں تھا. اس وقت ایک شن بنایا, شن کہتے ہیں نقطے کو. یہ نقطہ وہ انڈا ہے جس کا یہاں ذکر کیا گیا ہے. ایک انڈا بھی نقطہ ہے, نقطے کا ایک آکار ہے, اس کا ایک جسم ہے, اس کی جسامت ہے, والیوم ہے اس کی ایک نقطے کی. تو فرماتے ہیں کہ آد تھکی شن نہیں پایا, شن ماتھی شبد نہیں پایا. تو یہاں بھی وہی چیز آ گئی. کہتے ہیں کہ ساد ماہیں تھی شبد جو تھیا, شبد تھی تیج سروے کھیلیا. اس شبد کے ساتھ خدا کا نور کھیلتا ہے. یہاں کھیلنے کا مطلب اس کے ساتھ رہتا ہے, اس کی دوستی ہے. یہ شبد بیت الخیال ہے جو آپ کو نور تک پہنچائے گا. اس شبد کی اسم اعظم کی اور نور کی دوستی ہے. اسم اعظم نور میں کھیلتا ہے اور نور میں سے ہی اسم اعظم بنا. تو اے جوگی, دھیان دھرنے سے, عبادت کرنے سے ہی تم تارے جاؤ گے. सृण गुण आत्माएं थी, एक नारी जो सिरजी ते नारी थी, सर्वे गुण हुआ जी। वो तृण गुण जो है, जैसे कि तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण, इन गुणों में से फरमाया कि एक औरत पैदा की। ये औरत हमारी दुनियावी औरत नहीं, औरत यहां फेमिनिन जेंडर है। तृण गुण माहे थी, एक नारी जो सिरजी ते नारी थी, सर्वे गुण हुआ जी। तृण गुण थी ते अलगा रहे फरमाते हैं कि आद थकी सुन नहीं पाया, सुन माथी शब्द नहीं पाया। तो यहां भी वही चीज आ गई। कहते हैं कि साध माहें थी, शब्द जो थे शब्द थी तेज सर्वे खेलिया, उस शब्द के साथ खुदा का नूर खेलता है। यहां खेलने का मतलब उसके साथ रहता है, उसकी दोस्ती है। ये शब्द बैतुल ख्याल है जो आपको नूर तक पहुंचाएगा। उस शब्द की, इसमें आजम की और नूर की दोस्ती है। इसमें आजम नूर में खेलता है और नूर में से ही इसमें आजम बना। तो हे जोगी, ध्यान धरने से, इबादत करने से ही तुम तारे जाओगे। तृण गुण आत्माएं थी, एक नारी जो सिरजी ते नारी थी, सर्वे गुण हुआ जी। वो तृण गुण जो है, जैसे कि तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण, इन गुणों में से फरमाया कि एक औरत पैदा की। ये औरत हमारी दुनियावी औरत नहीं, औरत यहां फेमिनिन जेंडर है। तृण गुण माहे थी, एक नारी जो सिरजी ते नारी थी, सर्वे गुण हुआ जी। तृण गुण थी ते अलगा रहे तृण में से नफ्स अम्मारा, नफ्स लवामा, नफ्स मुतमईना, इसमें से एक औरत बनाई। वो औरत क्या है भला? माया। जिस तरह खुदा ताला की कुदरत है, हम उसको माया कहते हैं, इसी तरह से इंसान की फितरत है, वो भी माया है। और इंसान की फितरत भी खुदा की कुदरत के कब्जे में है। इंसान की फितरत, यहां वो नारी है, तीन गुण में से एक औरत पैदा की। और वो ये नारी थी, सर्वे गुण हुआ, यानी इंसान की उस फितरत में से सब कुछ गुण पैदा हुए, सिफतें पैदा हुई। गुण का मतलब है सिफत। तो गुस्सा इंसान की फितरत है, मोहब्बत इंसान की फितरत है, हद जाना इंसान की फितरत है, आराम करना इंसान की फितरत है, शहवत भी इंसान की फितरत है, खुदगर्जी भी इंसान की फितरत में है।
تو خدا تعالیٰ نے نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ تینوں کی چیزیں، یعنی اچھائی بھی ہے، مڈل چیز بھی ہے، برائی بھی ہے، یہ تینوں چیزیں اس مایا میں ہیں، اس عورت میں ہیں، اور وہ عورت انسان کی فطرت ہے۔ تو فرماتے ہیں سرن گن کی سے الگ آ رہا، پھر بھی یہ تینوں چیزیں سے فطرت بنائی، مگر پھر بھی انسان کی فطرت ان تینوں سے الگ بھی ہے۔ اور جب وہ فطرت ان تین گنوں سے الگ ہو جاتی ہے کہ کریا آد نرنجن یہ ہوا، یہ عمل کہ انسان اپنی فطرت سے الگ ہو جائے، مطلب اس کا اپنی فطرت کو قبضے کرے، اپنی فطرت کو سدھار لے لے، کنٹرول کرے، تو فرماتے ہیں کہ یہ عمل جو ہے یہی خدا تعالی ہے، نرنجن جو ہوا، خود خدا کی ہستی اس میں آ جاتی ہے۔ انسان
کے اندر خدا نے غصہ رکھا ہے، غصہ اس لیے رکھا ہے کہ وہ اپنے دشمنوں سے بچے، لیکن اگر انسان اپنے غصہ کو قابو نہ کرے تو وہ غصہ اس کو برباد کر دیتا ہے۔ انسان کے اندر خدا تعالی نے شہوت رکھی ہے، اب وہ اس لیے ہے کہ خدا تعالی کی دنیا کے اندر مخلوقات جاری ساری رہے، نسل قائم رہے، مگر انسان اس شہوت کو اگر اپنی فطرت کو قبضے نہ کرے تو اس سے گناہ ہوتے ہیں، زنا ہوتا ہے، بدیاں ہوتی ہیں۔ خدا تعالیٰ نے انسان کو کھانے کا محتاج بنا رکھا ہے، فطرت میں کھانا پینا آرام ہے، لیکن کبھی انسان اپنی اس فطرت کے اوپر قبضہ نہ کرے، یعنی کنٹرول نہ کرے، تو وہ بے شمار بیماریوں کا شکار بن جاتا ہے۔ تو انسان کی جو فطرت ہے، اگر اس فطرت کو قابو کر لیا جاوے، اوپر فرمایا کہ فطرت بنائی گئی ہے تین گنوں میں سے، لیکن ان تین گنوں میں سے وہ الگ بھی ہے۔ اگر آپ نے اپنی فطرت کے اوپر قبضہ کر لیا تو فرمایا یہی عمل، یعنی فطرت کے اوپر حاوی ہو جانا عبادت کے ذریعے سے، یہ عمل ہی تم کو خدا بنا دیتا ہے۔ تے کریا آد نرنجل جے ہوا، یہ عمل بذات خود خدا تعالی بنتا ہے، مطلب کہ تم خدا کے ساتھ مل جاتے ہو، اس کے نور میں فنا ہو جاتے ہو، اس کی ذات میں مدغم ہو جاتے ہو، یہ یونین ہے خدا کے نور کے ساتھ، یہی معراج ہے۔ آخری پاٹھ کہتے ہیں ناتھ اناتھ جو نے انی پیرے کہاویات بہت ج نام لاجی، ناتھ مرشد، اناتھ مرید، مرشد اور مرید اس کا پریم ہے۔ ناتھ اناتھ جو نے اینی پیرے کہاویات بہو تیج نا میلا جی، سید امام شاہ آسن جویا، سید امام شاہ آسن جویا، تے ناتھ اہو ناتھ گھرنا چیلا جگے سر جو گیت دھیان ماں کریا جی۔ ناتھ اناتھ مرشد اور مرید جو نے، دیکھو تو صحیح، کہتے ہیں دیکھو دیکھو، مرشد اور مرید دونوں اینی پیرے کہاویا، دونوں اسی طرح کہلائے گئے، کس طرح تے بہو تیج نہ میلا، نور سے وہ دونوں ایک ہو گئے، مرشد اور مرید نور کے اندر ایک ہو گئے، تے بہو تیج نہ میلا، میلا یعنی ملا، ملنا، میٹنگ، سید امام شاہ آسن جویا، کہتے ہیں امام شاہ نے بندگی کے اندر اس چیز کو دیکھا. کیا دیکھا؟ اے ناتھ اہو ناتھ گھر نہ چیلا. وہ مرشد خود کو کہتے ہیں، جیسے کہ ہندوؤں میں ایک سادھو کا خاص فرقہ ہے، ان کو ناتھ کہتے ہیں. وہ تمام فرقے کے جتنے لوگ ہیں وہ ناتھ ہیں. ناتھ کا مطلب مالک، ناتھ کا مطلب مرد، ناتھ کا مطلب سیٹھ، عورت کے خاوند کو بھی ناتھ کہتے ہیں. مگر اس فرقے کو، جو سادھوؤں کا ایک خاص فرقہ ہے اور وہ بہت اونچی قسم کے لوگ ہیں، یعنی پہاڑوں پہ ہی رہتے ہیں، شہروں گاؤں کے اندر آتے نہیں، بھیک مانگتے نہیں، تو یہاں پیر نے خود کو، سید امام شاہ نے خود کو ناتھ کہا. اور آہو ناتھ، کہ جو ناتھوں کا بھی ناتھ ہے، بادشاہ ہے ناتھوں کا، وہ ہے مولا باپا. فرمایا کہ اے ناتھ، یعنی میں، سید امام شاہ کہتے ہیں، اہو ناتھ گھر نہ چیلا، میں حضرت امام کے گھر کا چیلا ہوں، اس کا مرید ہوں. یہ لفظ امام شاہ کے اس گنان میں بھی ہے، آج تھکی کے گنان میں، لیکن ہم لوگ غلط پڑھتے ہیں. اس کے لیے مطلب سر نہیں ہوتا، کتاب میں بھی غلطی ہے، اب اس کتاب میں بھی بہت سی غلطیاں ہیں. آپ لوگ جب گنان پڑھتے ہیں تو آپ پڑھتے ہو ناتھ یا ناتھ یا میں پیر امام شاہ. ناتھ اناتھ، ناتھ کا مطلب حضرت امام، خود کو بھی اناتھ، مگر اگر خود کو ناتھ کہا تو اناتھ کس کو کہا؟ اور اناتھ کا مطلب یتیم بھی ہوتا ہے، اناتھ کا مطلب بے مرشدہ بھی ہوتا ہے، جس کا کوئی مرشد نہ ہو، بے پیرا کہتے ہیں، اور یہ گالی ہے. تو یہ ناتھ اناتھ نہیں ہے، اس میں یہ ہے ناتھوں دا ناتھ میں پیر امام شاہ، ناتھوں دا ناتھ میں پیر امام شاہ، ہمیں الکھ پروش گھر نہ چیلا جگے سر. ناتھوں دا ناتھ، وہ فرقے والے جو ہیں وہ سب مرشد ہوتے ہیں، ان ہر ایک ناتھ کا کچھ نہ کچھ دو دو چار پانچ 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 ہزار ہزار چیلے ہوتے ہیں، پھر ان کا ایک فرقہ ہے، وہ ایک دوسرے کے مرید نہیں بنتے. تو پھر کہتے ہیں کہ میں ناتھوں کا ناتھ ہوں. یہ جو ناتھ، جو مرشد ہے،
کنویں کا پیر ہوں مگر حضرت امام کے گھر کا غلام ہوں.
ناتھوں دا ناتھ ہمیں پیر امام شاہ، پن الکھ پروش گھر نہ چیلا. لیکن اس الکھ پروش، حضرت امام کے گھر کا چیلا ہوں، غلام ہوں. تو یہاں بھی ان کا مطلب یہ ہے، اوپر کا مطلب ہے ناتھ اناتھ، جو نے اینی پینے کہایا. دیکھو پیر اور مرید اس طرح سے کہائے کہ دونوں نور میں آ کے مل گئے، تے بہو تیج نہ ملا. سید امام شاہ آسن جویا، عبادت کے اندر اس نے دیکھا کہ اے ناتھ اہو ناتھ گھر نہ چیلا، مولانا حضرت امام کے گھر کا غلام ہوں. یہ چیز مجھ کو عبادت میں ملی. دیندارو، ہمارے گنانوں کے اندر، اور خصوصاً یہ جو جوگیسر کے گنان ہیں، ادھیاتمک باتیں، روحانی باتیں بہت ہیں. آپ کبھی جوگیسر کے گنان پڑھو، اس میں بہت سی چیزیں ہیں، اور ایسی چیزیں ہیں کہ آدمی کو پڑھتے وقت اچھی طرح سے اگر پڑھے اور بولے تو اس کے بدن کے اندر لرزہ پیدا ہوتا ہے، اور دوسرے جوگیوں کو بہت زوردار تانے میں نے دیے ہیں. ان کے اندر وہ لوگ خصوصاً جو تھوڑی سی بندگی کر کے پھول جاتے ہیں، ان میں بڑائی آ جاتی ہے، یا وہ دکھاوا کرتے ہیں، हमारे यहाँ इस किस्म के बहुत से लोग हैं। कई लोग दम्भी हैं, दम्भी कहते हैं नुमाइश करने वाले, अंदर कुछ नहीं लेकिन जाहिर बहुत कुछ बताते हैं। हजरत इमाम सरकार आका सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि हसनाबाद के कुबे के अंदर एक दफा बैठे थे, बैतुल ख्याल की मजलिस वालों की मेहमानी थी, बहुत लोग थे। इमाम ने फरमाया हाथ ऊंचा करो कि जिसने कोई चीज पाई है, नूर देखा है, खुशी पाई है। कुछ लोगों ने हाथ ऊंचे किए तो इमाम के सामने दूसरी या तीसरी लाइन में लंबी गोंडे की टोपी पहन के एक आदमी बैठा हुआ था, उसने अभी हाथ ऊंचा किया और उसका हाथ सबसे ऊंचा था। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह के हाथ में लकड़ी थी तो उसको साहब ऐसा लकड़ी से पॉइंट करके कहते हैं तुमने क्या बिल्ली का बच्चा देखा। उसका हाथ नीचे गिर गया, यानी वो आदमी ने नूर तो नहीं देखा था, हो सकता है कि रात को बिल्ली की आंखें चमकी हो और देखा हो, मगर ये बनावट है। अगर किसी को इबादत में कोई चीज मिले तो किसी को कहने की जरूरत नहीं, इंसान को अंदर से उस बात का पता लगता है कि यह चीज सच्ची है, उसमें कभी शक होता ही नहीं। जो लोग अपनी एक्सपीरियंस की बातें इबादत के अंदर लोगों को कहते या पूछते हैं, हला मिशनरी साहब मैं इबादत करता था मुझे ऐसा हुआ, भाई ऐसा हुआ तेरा ख्याल होगा। अब अगर वो आदमी इस चीज को कभी ये होवे कि सचमुच खुदा ने उसे कोई बख्शिश दी तो वो किसी को पूछता नहीं, क्योंकि वो जिस तरह आंख से देखता है इस तरह उसके दिल के अंदर खालिस यकीन होता है। इबादत करने वाले को अंदर से यकीन पैदा होता है, उसको पूछने की जरूरत ही नहीं रहती और उसमें उसको शक होता ही नहीं, कभी शक नहीं होता, कभी उसको ऐसा नहीं होता कि भला ये सच है कि नहीं। इबादत के अंदर सच्चाई ही सच्चाई है, यकीन ही यकीन है। तो योगीश्वर के जो ज्ञान हैं, इन ज्ञानों के अंदर हमें इबादत के अंदर जो मंजिलें और तजुर्बे अनुभव मिलता है उसका भी बहुत जिक्र है। तो दिन दारो आज की ये महफिल खत्म हुई। कल और परसों मैंने आपको कहा है, अर्ज की आपके सामने कि दो लंबे गिनान हैं और उन गिनानों के अंदर कल आपको और भी मजा आएगा और परसों उससे भी ज्यादा मजा आएगा। अच्छी तरह से आप सुनोगे अमल करोगे तो आप लोगों को इंशाल्लाह बहुत फायदा होगा। मौला आपको सुखी आबाद करे, ईमान की सलामती दे, ईमान ज्यादा करे, मौला अपनी मेहरबानियां ज्यादा करे, आपके ऊपर हमेशा रहमत करता रहे, आपको अपनी नूरानी बख्शिशें दे रहे, आपको मौला दुनियावी नियमतें भी अता करे, दसवन सुकृत में पूरा रखे, इबादत बंदगी में मशगूल रखे, अपना फरमान बरदार बनावे, मौला आपको हकीकती समझ देवे, मौला आपको अपनी मारिफत देवे, जमातों में कुनबों में सलासम मोहब्बत इतफाक देवे, मौला आपकी हर बला दूर करे, हर मुश्किल आसान करे, मौला आपकी दुआएं कबूल करे, मौला आपको दीन और दुनिया में अपनी पनाह छतर छाया में रखे, सहर बातों की दार इनायत करे।
खाना बदान, खाना बदान।